ओम शांति। बाप दादा के विशेष रतन जिनके रग रग में यज्ञ समाया है, 20 नाखून का जोर लगा करके इस बेहद यज्ञ को आगे बढ़ाने में जिसका योगदान है, ऐसे बाबा के अमूल्य रतन हम सभी के बीच में आदरणीय भ्राता मोहन भाई सिंघल जी उपस्थित है। सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। भ्राता जी, आपका इस सभा में बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय भ्राता जी, आपने इस ईश्वरी ज्ञान को परिवार के साथ लखनऊ में 1963 में प्राप्त किया हुआ है। आप ONGC में सर्विस कर रहे थे। आपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के कांटेक्ट में आने के बाद 1962 में आपको अंदर में ये संकल्प आया और आपने अपनी जीवन ईश्वरी सेवा में बेहद घर में समर्पित की हुई है। आपका ये परम सौभाग्य रहा है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद आपने अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दी। आपका ये परम सौभाग्य रहा है, जो हम सबके लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है, कि 1969 में वैसे आपने मम्मा और बाबा दोनों की साकार में पालना ली हुई है, जिसके दिव्य और अलौकिक अनुभव आपके पास प्राप्त है। और आपका ये परम सौभाग्य रहा है कि 1969 में पिताश्री ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की हरेक आज्ञाओं का पालन करके ब्रह्मा बाबा ने अपनी कर्मातीत अवस्था जिस समय प्राप्त करके 1969 18 जनवरी के दिन बाबा ने जब अपना पार्थिव देह त्याग किया, उसी समय आपकी नजर के सामने ये सारा दृश्य आपने देखा हुआ है। ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है, उसका अनुभव आपके पास प्राप्त है, जो आपको ये दृश्य देखने का मौका मिला है। और जब से आपने इस बेहद यज्ञ में अपनी जीवन समर्पित किया, शुरू शुरू में आपने आसाम और गुजरात में आप इस संस्था की कई शाखाओं को खोलने के लिए आप निमित्त बने हैं। 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान आपके निर्देशन में भारत के विभिन्न प्रांतों से 12 पदयात्राएं निकाली गई। उस समय आप यूथ विंग के सचिव पद पर थे। वर्तमान समय आप इस संस्था के ज्ञानसरोवर परिसर में परिसर एकेडमी के पद पर अपनी पूर्ण रूप से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 1988 से आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आप ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा आपने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी हिस्सा लिया है। आपने माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, ऐसी अनेक प्रकार के आप प्रवचन भी, प्रवचन का लाभ अनेक आत्माओं को दिया हुआ है। साथ ही साथ में आपने 5 पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं, जैसे स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड आदि आदि पुस्तकों का निर्माण भी आप स्वयं ने किया हुआ है। साथ में विशेष रूप में आप मेंबर ऑफ गवर्नमेंट बॉडी ऑफ राजयुगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसके भी आप मेंबर है। साथ में मेंबर ऑफ हेडक्वार्टर मैनेजमेंट कमिटी में भी आप स्वयं है, सेवा में आपका इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे बाबा के अमूल्य रतन जो इस यज्ञ को शुरू में आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा आध्यात्मिक, कई प्रकार के भारत में मेले हुए और उस मेले के अंदर आपने 20 नाखून का जोड़ लगा करके सेवाएं दी हैं, तो ऐसे बाबा के अमूल्य रतन जिनके स्वमुख से हम ज्ञान रतन से झोली भरेंगे। आज का आपका विषय है स्वमान और सम्मान, आदरणीय राजयोगी भ्राता मोहन भाई सिंगल।
ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को प्रतिदिन मुरली के द्वारा हमारी निमित्त जो बड़ी दादियां हैं, वरिष्ठ भाई बहने हैं, उनके द्वारा और अनेक रीति से ज्ञान की नई पराकाष्ठा की ओर लेते जा रहे हैं, और उनमें विशेष जो हम सब के लिए एक बहुत ही उपयोगी और अनुभव योग्य बात है, वो है कि कैसे हम सदा स्वमान और सम्मान में स्थित रहें। आज की मुरली भी हम सब ने सुनी, उसमें भी बाबा ने स्वमान की बात बहुत अच्छी बताई। कैसे जब हमारा यज्ञ स्थापन हुआ तब हमारी जो आज वरिष्ठ इतनी बुजुर्ग दादियां हैं, उस समय तो कम उम्र के थे, 10, 12, 15, 20 साल के उम्र के, लेकिन बाबा ने सबको समान में स्थित करने के लिए क्या किया। आज की मुरली में क्या एक बात थी कि बस उसको सुनते ही अगर हमें भी अगर ऐसा हो तो तुरंत ही हम अपने समान में स्थित हो जाए। आज बाबा ने क्या कहा, उस समय बाबा ने क्या किया, सबके नाम बाबा ने कहा ना, इकट्ठे ही बहुत नाम ऊपर से आए अव्यक्त वतन से। बाबा ने लौकिक बात भुलाने के लिए सबको नए नए नाम दिए। आज भी दादी जब मुरली पढ़ रहे थे, रतन मोहनी दादी जी, ये भी उनका नाम जो है ऊपर से आया हुआ है, रतन मोहनी रत्नों की खान, प्रकाश मणि दादी का, धैर्य मणि, अलग अलग इतने नाम थे कि बस उसका क्या वर्णन किया जाए। हर आत्मा को बाबा ने नया नाम, जिससे कि ये देह का नाम अगर भूला तो नेचुरली देह के पुराने संबंध भी भूल जाएंगे, और बस नया नाम ही अगर बुद्धि में रहेगा तो उसी स्मृति में रहेंगे, और वही समान जितना बुद्धि में रहेगा उतना हमारी स्पीड होशियारत की और आगे बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बाबा ने नए नाम दिए हर आत्मा को। मनमोहनी नाम दिया, जो हमारा मनमोहनी है ना बड़ी दीदी, बस मन को मोहने वाले। ऐसे अलग अलग इतने ढेर सारे नाम, सभी समझो 250-300 नाम जो आए हर एक को दिए, लेकिन अर्थ सहित। हम लोगों को भी बाबा ने नाम दिए हैं, सबको नाम दिए हैं, जितने हमारे समान है ना वो सब हमारे ही नाम है। ऐसा ना सोचें कि इन दादियों को ही नाम दिए हुए, नहीं, हम सबको भी बाबा ने जो नई स्मृति दिलाई है, हमें याद है, हमें भी ये सौभाग्य मिला जब बाबा से पहली बार मिले तो बाबा ने पूछा, हाँ बस बाबा का तो पर्सनैलिटी ही ऐसा था, बस लंबा कद, गोरा रंग, एकदम आंख में इतनी जैसे गहराइयां, झलकता हुआ प्यार, बाबा के सम्मुख जब आते थे बस बाबा आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, बस बाबा ऐसे वहां कर देते थे और सब लोग खींच के चुंबकीय आकर्षण की तरह बाबा की बाह में आ जाते थे। तो उसके बाद हमारे साथ तो ये हुआ, बाबा ने पूछा जब पहली बार मिले, बच्चे क्या नाम है? हमने लौकिक बताया, लौकिक में श्री नाम है ना? तो बाबा ऐसे श्री मोहन सिंघल पूरा बताया। तो बाबा ने कहा श्री, तो देखो बाबा हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हरेक को पहली नजर में ही अपना बना लेना, ये बाबा की बहुत बड़ी कला थी। बच्चों के साथ बच्चा, युवान के साथ युवान, और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग, बाबा कैसे हो जाता था। देखो आओ आओ दीदी, आओ दादी, बस देखो आज बाबा को एक बच्चा मिला, बाबा के पास आया और बाबा से भी वो महान है। ऐसा हो सकता है ना? कोई भी चिट चैट में, क्योंकि उस समय हमारी उम्र यही 16-17 साल की थी, ग्रेजुएशन कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो बस फिर बाबा का हर चीज में रहस्य भरा होता है, उसमें अर्थ होता है। बाबा ने बताया देखो बच्चे, अभी तो श्री कोई हो नहीं सकता, श्री माने जिसका शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। देवी देवताओं को ही हम श्री कहते हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, उनका जन्म भी विकार से नहीं होता, आत्मा भी संपूर्ण पवित्र है, इस जन्म में तो कोई हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा इसीलिए अब श्री जैसा तुम्हें बनना है, अब बाबा तुम्हें नाम मोहन देता है बस। तो जैसे बाबा ने पुराने जन्म की स्मृति नाम जैसे भुला दिया, और तब से हमें यही रहा कि अब श्री जैसा बनना है, श्री माने शरीर भी पवित्र आत्मा भी पवित्र, देवी देवताओं की तरह। तो एक ये बात है, ये तो बाबा ने चूंकि हमें सौभाग्य मिला साकार में मिलने का, लेकिन आप सब भी, हम सबको भी ये स्मृति में रहे कि बाबा ने कितने सुमान दिए हैं, वो ही सुमान की स्मृति, वो ही हमारा नाम है। बाबा ने कितने सुमान दिए हैं, क्या क्या दिए हैं याद करो, एक एक सुमान। मैं शुद्ध पवित्र शक्तिशाली आत्मा हूँ, बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठी हूँ, बाबा की मैं मस्तक बनी हूँ, बाबा के नैनों के नूर हूँ, बाबा के दिल तक नशीन आत्मा हूँ, जो जो बाबा ने हमारे वो अर्थ सहित हम सबको सुमान दिए हैं, वो सुमान की स्मृति ही हमारे नाम है। इस कारण से सदा वो याद रहे सुमान हमारा कौन सा है। जब सम्मान और सम्मान की बात आती है ना, तो बच्चों का एक वो खेल याद आ जाता है, कोई चिल्ड्रंस पार्क जैसे होते हैं ना, बच्चों के पार्क वगैरह, तो बच्चों के जो पार्क होते हैं आपने देखा होगा, बच्चों का एक खेल होता है, फिसलने का खेल होता है, आदि आदि एक खेल होता है, लकड़ी का तख्ता होता है, दोनों तरफ बच्चा बैठ जाता है, सीसा बोलते हैं उसे, एक तरफ वो नीचे जाता है तो दूसरा बच्चा ऊपर हो जाता है, दूसरा वाला जब नीचे आता है वो पहला वाला ऊपर हो जाता है, ऐसे सीसॉ का खेल होता है। तो इस रीति से ये सम्मान और सम्मान की भी बात यही है कि हम जितना अपने सम्मान में रहेंगे, जो बाबा ने दिया है हमारी महानता का वर्णन हमारी बुद्धि में रहे, स्मृति में रहे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अन्य आत्माओं के लिए हमारे मन में सम्मान पैदा होगा, और पहला अपने अंदर हमारा अपने लिए सम्मान पैदा हो। उसका भाव क्या, अपने लिए सम्मान की बात, अर्थात मैं ये शरीर नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, जो बाबा ने दिया है। और जितना आत्मिक स्मृति में हम स्थित हो गए, तो बाबा ने भी सबसे पहले क्या किया, आप सबने भी पढ़ा होगा बाबा की जीवन कहानी में भी, और कि बाबा ने भी सबसे पहले अपने को सम्मान में स्थित किया। 1936 में जब बाबा को साक्षात्कार हुए, और तो उस समय बाबा ने क्या किया याद है, कितना पुरुषार्थ किया, लिख लिख के ही पहले मैं आत्मा हूँ, जशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मला आत्मा है, ये सब बाबा के लौकिक में पुत्र पुत्री या लौकिक में पत्नी का नाम जशोदा था। तो ये लिख लिख करके बाबा ने पक्का करा, तो उससे फायदा क्या हुआ बाबा का कि जब ये आत्मिक स्वरूप में बाबा खुद स्थित हुए तो कोई भी चीज होती है उसका रिजल्ट दिखना चाहिए, व्यवहार में दिखना चाहिए। तो जब बाबा खुद आत्मिक रूप में स्थित हुए तो जब बाबा मिलते थे और हम लोग जाते थे बाबा के बाहों में, बाबा जैसे ही दृष्टि देते थे हम सब भी एकदम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, भले थोड़े समय के लिए लेकिन बिल्कुल देह का भान भूल जाता था। फिर बाबा क्यों? क्योंकि बाबा खुद आत्मिक स्वरूप में सम्मान में इतने स्थित थे, जिसको भी दृष्टि दी वो सम्मान में स्थित हो जाता था। उसके बाद थोड़ी देर बाद बाबा ऐसे थपथपा के, हाँ बच्चे आओ 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 नीचे, जैसे हम सब विदेही देहभान से न्यारे हो जाते, कोई आत्मा नहीं जाती, कॉन्शियसनेस हमारी चेतना जैसे देह से लुप्त होके आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते थे। फिर बाबा ऐसे थपथपा के फिर जैसे कि हम खींच के आते, बाबा टोली खिलाता, हालचाल पूछता और उसके बाद एक जाता था, फिर दूसरा आता था, फिर दूसरा भी यही अनुभव, हर एक को ये अनुभव करता था मैं आत्मा सोमान में स्थित। तो पहली बात सोमान में स्थित होने का लक्षण ये कि हम अगर होंगे, हम जिस भी आत्मा को दृष्टि देंगे, जिस आत्मा के संपर्क में आएंगे, व्यवहार करेंगे, जो बोल बोलेंगे, हर एक को वो सुमान में स्थित कराने वाले होंगे, देहभान से परे ले जाने वाले होंगे। तो एक तो ये जो सुमान में जो बाबा ने दिए हैं वो हमारा सुमान स्थित होना चाहिए। और कई बार होता है हम चाहते हैं हम सुमान में और स्थित रहें, बाबा ने कहा है कई बार बच्चे शक्तियों का आवाहन भी करते हैं, फलानी शक्ति मानो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, कोई बात है हो गई, कोई घटना हो गई, संकल्प रूपी खजाना हमारा वेस्ट जा रहा है, न चाहते हुए भी बहुत तरह तरह के संकल्प आ रहे हैं, हम अगर जब चाहते हैं ये रुके, लेकिन फिर भी नहीं रुक पाते। क्यों नहीं रुकते हैं? कई बार होता है हमने कोई शक्ति का, समाने की शक्ति का आवाहन किया, सहन शक्ति का आवाहन किया, आ भी जाती है, सक्सेसफुल हो जाते हैं। कई बार थोड़ा सा हुए फिर संकल्प चलने लगे, फिर काफी संकल्प चलने के बाद फिर चेतना जब वापस आती, अरे मैं तो आत्मा हूँ, ये नहीं चलना चाहिए, समय और संकल्प रूपी खजाना वेस्ट जा रहा है, फिर पकड़ के लाते हैं, लेकिन फिर एक दो मिनट के बाद फिर बुद्धि अगर चली जाती है पुरानी तरफ, तो ये क्यों होता है? तो वो बाबा ने कहा है क्योंकि हम अपने सुमान की सीट पर स्थित होके उस गुण या शक्ति को ऑर्डर नहीं करते। साधारणतः यही होता है, कोई मानो गवर्नमेंट सर्वेंट, इवन कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, बड़ा है, जब तक वो सीट पर है सब उसकी आज्ञा मानते हैं, ऑर्डर मानते हैं, लेकिन जब वो सीट से उतर गया, रिटायर हो गया, ट्रांसफर हो गया, चला गया या हार गया, तो फिर कोई उसका ऑर्डर नहीं मानता क्योंकि वो सीट पर नहीं है। ऐसे हम सम्मान की सीट पर स्थित हुए बिना जब हम ऑर्डर करते हैं किसी गुण शक्ति को, तो क्या होता है, वो गुण या शक्ति नहीं आती हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम अपनी सीट पर ही स्थित नहीं है। जब तक सीट पर स्थित नहीं होंगे कोई हमारा कहना नहीं मानेगा, ऑर्डर नहीं मानेगा। इसलिए बाबा ने कहा है पहला पहली जो बात है अपने सम्मान की सीट पर स्थित होके पहले, उसके बाद हम किस गुण शक्ति को ऑर्डर करते हैं वो तुरंत मान जाती है और फिर आ जाती है। हम अनुभव करते हैं हाँ ये शक्ति जो है ये हमारे पास है। एक तो ये और सम्मान, हम अपना उस सम्मान में स्थित होने का सदा अभ्यास करते हैं। इसके लिए बाबा ने ज्ञान के कितने अनगिनत पॉइंट सुझाए हैं, उसमें हम स्थित हो जाए। कई बार क्या होता है वो पॉइंट नहीं आती, इमेजिनेशन नहीं आती, उसके लिए भी बाबा ने युक्ति बताई है कि मानो जो हमारे चित्र है ना, उन चित्र के सामने जाके बैठ जाए। मानो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का चित्र, इसीलिए बाबा कहते हैं अपने घर में सदा ये चित्र रखो, अच्छे अच्छे गीत के वो रखो, उससे क्या चित्र के सामने बैठ गए, कल्प वृक्ष का चित्र है। नीचे हम देखें जड़ में बाबा मम्मा बैठे हैं और अश्वतन बैठे हुए हैं, अपने को विजुअलाइज करें, अपने को देखें, मैं भी कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई आत्मा हूँ, इस सृष्टि की मैं आधारशिला हूँ, नींव हूँ, मेरे आधार पर ये कल्प वृक्ष जैसे टिका हुआ है, ये है। और बस मैं पूरे सृष्टि की जड़ हूँ, जड़ से ही तो पूरे वृक्ष को भोजन पानी और सब चीज प्राप्त होता है, तभी तो वो छोटे नन्हे से पौधे से बढ़कर बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो मैं उस जगह बैठी, क्योंकि जो चीज दिखती है विजुअलाइज होती है वो दिमाग में ज्यादा देर तक टिक जाती है, कई बार खाली इमेजिनेशन होती है तो थोड़े कुछ सेकंड के लिए आएगी फिर लुप्त हो जाएगी, उसे डिफिकल्ट होता है। इसीलिए अगर चित्र कोई मानो ब्रह्मा त्रिमूर्ति का चित्र है, बस त्रिमूर्ति बाबा तो है ही, लेकिन मैं भी त्रिमूर्ति हूँ, बाबा ने मुझे त्रिमूर्ति बनाया है, रोज ब्रह्मा के रूप में मुझे नए शुद्ध महान संकल्पों की स्थापना करनी है, और रोज मैं करती हूँ आत्मा, और साथ ही साथ शंकर के द्वारा जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने विचार हैं, उन सब का विनाश मैं कर रही हूँ। और जब पुराने का विनाश और नए संकल्पों की नई चीज की स्थापना होती है, फिर सारे दिन भर विष्णु के रूप में उनकी पालना मुझे करनी है, वो करते हैं। हर चित्र को, हर चीज को अपने से लगा के हम चलते रहे। जब हम अपने से लगा के चलेंगे वो चीज लगेगी ये हमारी है। जैसे बैंक में कैशियर होता है, लाखों रुपए गिनेगा रोज, इधर से उधर, उसको देना उससे लेना, वो सब होगा, उसमें उसका ममत्व नहीं होगा। लेकिन जब उसको पहली तारीख को या जब सैलरी मिलेगी, चाहे उस जितना गिनता है उससे बहुत कम होगी, 20-25 हजार, 30-50 हजार, कुछ भी, वो उसे लगेगा ये मेरी है। और जब अपनी चीज होती है ना, तो व्यक्ति का उसके अंदर अधिकार होता है। ऐसे ही जब ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हम जितना जितना अपना बनाते रहेंगे, केवल मुरली में बाबा ने कहा वो नहीं, बाबा ने कहा और सुना, फिर उस पर कुछ मंथन वगैरह हो, उस पर हमारा विचार चले, तो वो ज्ञान हमारा अपना बनता चला जाता है। इसीलिए बाबा बाद में भी, पहले यज्ञ के शुरू में तो जब 36-37 में क्या हुआ वो तो हम सब ने सुना है, लेकिन जो हमें 1961-62 से देखने का मौका मिला, तो उसमें भी बाबा जब किसी से पूछता था, आजकल की दुनिया में तो अनेक नाम है, मानो किसी का नाम माया देवी है, तो बाबा देख के कहता, अरे माया, अभी माया का क्या काम, माया ने तो बहुत समय से हम बच्चों को दुखी कर दिया है, अब से तुम्हारा नाम मानो लक्ष्मी देवी या कोई गीता देवी, कोई अच्छा नाम जिससे कि बाबा को, उस बच्चे को ये स्मृति रहे, अब पुराना जन्म पुराना जीवन मेरा खत्म हो गया, नए उसकी ही स्मृति में रहे। इसी तरह बाबा जो भी ऐसी बात होती थी, उस पुरानी बात से बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवा के एकदम नए उसमें ले आता था संगम युग में। तो एक तो ये स्वमान, तो बाबा तो हम सबके सामने रोल मॉडल था ना, इसलिए मैं बाबा की बातों के साथ साथ लगाता चल रहा हूँ। मैंने देखा एक बार जब हम पर 1964 की बात होगी, तो मधुबन में आए हुए थे, तब तो हम उधर इंजीनियरिंग कर रहे थे, छुट्टियां होती थी, दोपहर को सोने का कोई बात नहीं, तो हमने देखा बाहर, तब हमारी एक दादी भूरी दादी होती थी, वो पहरे पर थी वहां पर मधुबन में पांडव भवन में, तो कुछ सन्यासी, 5-6 सन्यासियों का एक ग्रुप था, उनमें एक बड़ा सन्यासी था, वो आगे आगे था और बाकी सन्यासी और साथ साथ पीछे थे। तो उन्होंने बोर्ड देखा, रुके, और उन्होंने कहा भूरी दादी को कि भाई हमें आपके गुरुजी से मिलना है। तो उसने बताया, दोपहर का लगभग 2-3 बजे का समय था, तो उसने कहा हाँ हाँ जरूर मिलिएगा, लेकिन ये तो थोड़ा बाबा का आराम करने का समय, आप शाम को आ जाइए, 5 बजे आ जाइए, उस समय मिल लीजिए, या कल सुबह आ जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो बाद में चले जाएंगे, हमें तो अभी मिलना है इसी समय। तो उसने समझाने की कोशिश करी लेकिन वो समझे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो अभी मिलना है, और आपके हमने सुना है आपके यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है बड़ा शास्त्रों के विपरीत है, आपके यहाँ आत्मा भाई ये गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, आपके यहाँ बताया आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती, आप कहते हो पशु पक्षी योनियों में, तो ये सब बातें जो शास्त्रों के विरुद्ध है हमें आपके गुरु जी से बाबा जी से चर्चा करनी है, शास्त्रार्थ करने आए। बड़े अंदर भरे हुए जैसे लग रहे थे। तो बहन ने समझाने की कोशिश करी, फिर उसने कहा ठीक है मैं बाबा के पास जाती हूँ। गई बाबा के पास कि बाबा ऐसे आए, देखा बाबा तो जगे हुए थे और कोई आराम का नहीं। तो बाबा को कहा बाबा ऐसे वो आए हैं और चाहते हैं अभी हमने। बाबा ने कहा हाँ बच्ची बैठाओ बैठाओ, तब हिस्ट्री हॉल था कि जाओ बैठाओ बाबा आता है। तो देखो बाबा को अपने ना आराम का ख्याल ना कुछ, जब भी कोई आए बाबा सदा सेवा में हाजिर। तो बाबा थोड़ी देर में आए, उसने लाके बैठा दिया बहन जी ने, और थोड़ी देर बाद बाबा आए। हमने देखा वहीं थे हम कि बस उन्होंने आके, और वो सन्यासी वगैरह आके तो हिस्ट्री हॉल में नीचे बैठ गए, ऊपर संदली ऐसे 3 संदली पड़ी होती थी, तो उसके वहां आके उस पर नहीं बैठे। कायदा होता है सन्यासियों का भी, जिस गुरु के आश्रम में जाते हैं वो गद्दी में वहीं का ही जो गुरु होता है वही बैठता है। तो बाबा आए, देखा कि बस बड़े प्यार से बाबा ने कहा अरे बच्चे तुम नीचे क्यों बैठे हो, आओ आओ यहाँ संदली के ऊपर बैठो। नहीं नहीं वो तो आपकी गद्दी है, आप बैठो, उन्होंने उसका जो मुख्य था। तो बाबा ने कहा अरे बच्चे देखो आप सन्यासी तो कितने महान हो, आप लोगों ने तो पवित्रता के बल पर भारत को थामा हुआ है, अगर आपकी पवित्रता नहीं होती तो भारत और क्या से क्या हो जाता। तो ये अपने लिए ये भी तो देखो गृहस्थी है। बाबा ने अपना बताया, कोई भी ऐसा कोई गुरु होगा जो अपने ही आश्रम में अपने लिए अपना कोई पुरानी बात बताए, लेकिन बाबा ने तो बड़े देखो ये भी गृहस्थी था, लेकिन आप लोगों की महिमा है, पवित्र हो और आपके द्वारा ही ये सृष्टि जैसे थमी हुई है, आओ आप ऊपर बैठो। वो लोग फिर भी हिचकिचाने लगे, तो बाबा ने बड़े प्यार से एक जो सन्यासी मुख्य था उनका, उसको कहा कि आओ आओ बच्चे, ऐसा करके उसको उठा के ऊपर संदली पर बैठा दिया और बाबा साथ में बैठ गया नीचे। देखो ये सम्मान, इतना बाबा ने प्यार से उसको वो दिया कि बिल्कुल एकदम जो इतने भरे हुए आए थे उसके अंदर ही अंदर बिल्कुल पानी हो गए। और फिर बाबा ने थोड़ी देर में पूछा हाँ बच्चे हाँ बोलो कैसे आना हुआ। तो उसने कहा कि बाबा ये सब एक दूसरे को देखें, वो सन्यासी उसको देखे, वो बोले दूसरा और हरेक, लेकिन फिर उनमें से जो मुख्य था उसने बोला कि हमने तो ये सुना है बाबा की आपके यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो बिल्कुल शास्त्रों के विपरीत है, यहाँ मनुष्य पशु पक्षी योनि में नहीं जाता, या गीता का भगवान या 84 सारा भक्ति मार्ग की बाबा वो बहुत बातें बोलने लगे। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो इसने भी ब्रह्मा अपने लिए भी ये भी देखो ये गृहस्थी था, जीवन भर सब शास्त्र पढ़े लेकिन ये पढ़ के भी ना कोई प्राप्ति नहीं हुई, पढ़ा जीवन भर कि भाई काम महाशत्रु है लेकिन पवित्रता की धारणा नहीं हुई, पढ़ा जीवन भर कि मनुष्य आत्मा ऐसा ऐसा मतलब योनियों में जाती है लेकिन उन पशु पक्षी वैसे संस्कार मनुष्य के जीवन में रहे, आदि आदि सब बाबा ये बताते रहे। अब जो है ये ज्ञान ये नहीं देता, ऊपर से शिव बाबा आता है वो बोल के चला जाता है और जो भी ज्ञान है इतना प्रेम से प्यार से बताया, जो इतना भर कर आए थे कि हम ये करेंगे शास्त्रार्थ करेंगे ये करेंगे, बस बाबा के कुछ महावाक्यों से ही ना इतने संतुष्ट वो हो गए थोड़ी देर में हाँ बाबा ठीक है, बस ऑटोमेटिकली उनके मुंह से वो निकलने लगा और उसके बाद उठ के छुट्टी लेके वो वहां से चले गए। तो ये सम्मान की ब्यूटी है कि हम जितना, और ये सम्मान तब दे सकते हैं दिल से जब हम अपने स्वमान में स्थित होंगे। तो इतना बाबा ने प्रेम दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया कि वो बिल्कुल पानी हो गया और उसके बाद उठ के वहां से छुट्टी लेके चले गए। तो अभी आवश्यकता यही है, इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि तुम बच्चों को हर एक को कितने सर्टिफिकेट हम लोगों को लेने हैं, 3 सर्टिफिकेट, वेरी गुड। कौन कौन से बाबा ने बताए हैं? बड़ा सहज, हमेशा कई वर्षों से आया है मुरली, कि एक प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट, एक मन पसंद स्वयं पसंद, और एक जग परिवार पसंद जग पसंद। तो हरेक के लिए बाबा ने ये सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा हुआ है। जितना जितना हम ये सर्टिफिकेट लेते जाएंगे उतना उतना कर्मातीत अवस्था की तरफ, अपनी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो प्रभु पसंद का कौन सा सर्टिफिकेट है, उसका लेने का क्या तरीका है? वैसे बहुत लंबी चौड़ी बात है, केवल एक बात बताओ, योग करें। सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं, प्रभु पसंद के लिए, प्रभु पसंद के लिए, भगवान हमें पसंद कर ले उसके लिए जो श्री माता। अच्छा, और बहुत सारे हैं इसके लिए, वो स्लोगन याद रखें जो बाबा ने कहा है, साहब राजी किस चीज पर? सच्चे दिल पर साहब राजी। जितना जितना हमारे दिल में सच्चाई और सफाई होती जाए, केवल एक बात ही, सच्चाई और सफाई, कोई ऐसी बात नहीं। कोई कहे, कई बार कहते हैं ना किसी के लिए कोई होता है तो ये अंदर एक है बाहर दूसरा है, बाहर ऐसा दिखा रहा है लेकिन अंदर कुछ और। सच्चाई सफाई जितनी अंदर होगी उतनी हमारे हर मन वचन वाणी कर्म व्यवहार सब में वो रिफ्लेक्ट होती जाएगी। तो सच्चे दिल पर साहब राजी। और इसके लिए भी हम कहें कि हाँ मेरा तो बहुत सच्चा दिल है, लेकिन पहचान क्या है? वो भी उसके लिए दूसरा स्लोगन जो बाबा ने कहा है, सच तो बिठो नाच। जो सच्चा होगा ना वो खुशी में नाचता रहेगा। जो कल परसों भी बाबा ने कहा खुशी के ऊपर, जो बाबा ने पूरी सारी मुरली का सार बता दिया, जैसा कल रमेश भाई ने भी कितना डिटेल में कितना अच्छी तरीके से सारा बताया। तो अगर हम अपनी खुशी को कायम रखते हैं, कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, कोई कहीं पर कोई कटुता हो किसी भी प्रकार का, लेकिन हमारी खुशी गायब ना हो, तो इसका मतलब हम खुशी में जो नाच रहे हैं तो सच्चे दिल पर जो है, सच तो बिठो नाच। एक ये है, और क्या है सच्चाई की पहचान? क्योंकि हमारे कहने से नहीं, हमारे जो दिखते हैं व्यवहार है उससे लोग मेजर करते हैं, नापते हैं कि इनके अंदर क्या है। और क्या बोला है? जब आज की दुनिया ऐसी है, सब कहते हैं भाई सच्चाई से तो काम चल ही नहीं सकता, ना बिजनेस चलेगा, ना ये होगा, ना वो होगा, ये तो झूठ का साम्राज्य है, उसका बोलबाला है। उसके लिए भी बाबा ने क्या कहा है कि सच की नाव डोले लेकिन डूबे नहीं। तो इसीलिए परिस्थितियां आएंगी, कोई ऐसा लगेगा हलचल होगी, लेकिन बाबा ने जो परिस्थिति में बताया, अति हलचल हो बाहर लेकिन अंदर की स्थिति हमारी अति अचल हो। हमें मन में ये रहे कि जो भी होगा अंत में विजय मेरी निश्चित है, भगवान हमारे साथ है। पांडवों को यही तो निश्चय था। तो जितना हमारे अंदर ये रहेगा उतना डावाडोल करने की परिस्थितियां आएंगी, लेकिन वो हमें समाप्त नहीं कर सकती, थोड़े समय के लिए आएंगी। और जब बाबा के सामने कम आई क्या? यज्ञ के इतिहास में भी हमने सुना है ऐसी परिस्थिति, बैगरी पार्ट चला, भोजन खाने को भी नहीं था, लेकिन बाबा का इतना अटल अटूट विश्वास कि वो भी आई और चली गई परिस्थिति। तो इस कारण से ये मन में हो और जितनी सच्चाई और सफाई होगी ना, उतना प्रभु का सर्टिफिकेट हमें मिलता जाएगा। केवल एक चीज ही याद रखे, ये प्रभु की सच्चाई सफाई का, तो एक सर्टिफिकेट ये मिल जाएगा। दूसरा, मन पसंद का क्या सर्टिफिकेट है? हम अंदर से भी ना ये हो हमारे ही कॉन्शियस, क्योंकि हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हुए भी कई बार हमें लगता है अरे हमारी इतनी बड़ी बड़ी दादियां हैं, दीदियां हैं, इतने बड़े वरिष्ठ भाई बहन हैं। अब बाबा ने कहा विजय रतन तो मेरे कुछ गिने चुने ही हैं, माला के मणके तो कुछ गिने हैं, तो बस अरे वो बनेंगे, मैं गृहस्थी वाला गृहस्थी वाली परिवार में रहने वाले, हम कैसे इतने ऊंचे विजय रतन बन जाएंगे, माला का मणका बन जाएंगे। तो ये जैसे ही विचार मन में अगर आता है ना, तो हम खुद अपने भाग्य को लकीर लगा लेते हैं। तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा है कि जब भी कोई ऐसे, हम बाबा ने माला का बड़ा अच्छा रहस्य बताया है, बहुत पहले मुरली में, अभी भी मुरलियां रिपीट होंगी, वो आएगा। बाबा ने क्या कहा है, माला जो है ना मेरी, इस माला में एक विशेषता है। कौन सी विशेषता? ये तो बाबा ने कहा एक माला नहीं, अनेक माला है, और कोई 100-108 दाने निश्चित नहीं, पुरुषार्थ करे और कई उसके अंदर आ सकते हैं, अभी बिल्कुल ओपन है। लेकिन बाबा ने एक विशेष बात जो बताई कि मेरी माला में एक विशेषता है, वो क्या, कि मेरी माला में हर प्रकार के बच्चे, केवल यही नहीं कि जो 1936-37 में ज्ञान में आ गए वही हैं, नहीं, बाबा ने ये भी कहा लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, बाद में आने वाले भी वो ऐसे भी बच्चे हैं, पुराने में पुराने हैं तो नए में नए भी हैं, बहुत फास्ट स्पीड से चल के माला का माना बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा उसके अंदर मेरे समर्पित बच्चे हैं तो साथ में गृहस्थी वाले भी हैं, जो पुरुषार्थ करके इतना आगे पढ़ गए, कुमार हैं तो अधर कुमार भी हैं, कुमारियां हैं तो अधर कुमारियां भी हैं, भारतवासी है तो विदेशी भी है, चाहे एक एक दो दो सैंपल हो, लेकिन माला की यही विशेषता है, उसमें मेरे सब प्रकार के बच्चे हैं। इसीलिए, और वो जैसे कि सीट रिजर्व हो गई हमारी, तो उससे क्या हुआ कि जब सीट रिजर्व हो गई ना, नॉर्मल केस में गवर्नमेंट की नौकरियों में उन सब में भी जो सीट रिजर्व होती है, मानो कोई जॉब है शेड्यूल कास्ट के लिए है, या शेड्यूल ट्राइब के लिए, या बैकवर्ड पिछड़ी जाति के वाले के लिए, तो दूसरा उससे अच्छा भी अवेलेबल होगा, लेकिन उस सीट को भरा नहीं जा सकता जनरल कोटे से, उसके लिए वो ही चाहिए। तो जो कोटा है अधर कुमार के लिए, अधर कुमारी के लिए निश्चित, जो परिवार वाले के लिए, वो उसी से ही भरा जाएगा। ड्रामा में ऐसा निश्चित है, क्योंकि भगवान तो सुप्रीम जस्टिस है, सबसे बड़ा न्याय करता है। अगर उसने सारे के सारे ही पुराने 1936-37 वाले ले लिए, तो उसके आगे आने वालों का क्या होगा? बाबा ने कहा नहीं, सबके लिए ये पुरुषार्थ का रास्ता खुला है। तो इसीलिए हम कभी भी ये ना सोचें कि अरे हमारे दादी दीदियां और ये ही हैं, नहीं, मैं भी बाबा आपका विजयी रतन हूं, कल्प पहले वाली माला का मणका हूं, आपने भी कल्प पहले मुझे विजयी बनाया था, अभी भी विजयी बना रहे हो, और कल्प कल्प मैं विजयी बनती रहूंगी या बनता रहूंगा। बाबा हम वही आत्माएं हैं कल्प पहले वाली। तो जितने हम वो अपने अंदर ये निश्चय करते जाएंगे बाबा के सम्मुख अपनी विजय, उसको रिवाइज करते जाएंगे, उतना उतना वास्तव में ना ये हमारा जो मन है ना, इसीलिए कहा है कि मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। इसीलिए कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसीलिए कहा है गीता में भी मन मना भाव, तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव, नहीं, मन मना भाव। तो हम अपने मन के अंदर, कॉन्शियस माइंड तो ये है जागृत मन, लेकिन जो एक अर्ध जागृत मन होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर हम ये बिठा दें, बार बार, इसीलिए बाबा कहता है योग करो, उसके अंदर अच्छे पॉजिटिव विचार लाओ, उसके अंदर ये ही है, अंदर तक जब ये घुस जाएगा मैं ही हूँ वो विजयी आत्मा, कला पहले वाली माला का मणका मैं ही हूँ, तो अंदर जितना बैठता जाएगा, वैज्ञानिक वगैरह बोलते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली, जिसी को हम वृत्ति भी कह देते हैं। तो मन तो फिर भी एक चैतन्य जो है, जो संकल्प करता है, लेकिन संकल्प से भी सूक्ष्म जो वृत्ति है, जो स्वप्न है, अंदर जितने हमारे ये घुसता जाएगा वो हमें वैसे ही स्वप्न आएंगे, वैसे ही हमारे संकल्प चलेंगे, वृत्ति हमारी वो हो जाएगी, वैसी दृष्टि हो जाएगी, वैसी फिर कृति होगी, सब कुछ वो, अगर हमने हमारी अंदर की स्मृति और वृत्ति को बदल दिया। ये मन से भी सूक्ष्म चीज है, तो इसीलिए हमें कभी भी अपने मन के अंदर कमजोरी का कोई संकल्प नहीं। शास्त्रों में भी गायन है ना, बस जैसा हमारा संकल्प होता है, मानो पुराने जमाने में भक्त भगवान से प्रार्थना करता था, बहुत सच्चे दिल से तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिए, तो भक्त अपनी इच्छा करते था, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी करो, वरदान दो। भगवान क्या कहते थे, बस ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सीधा ही तथा अस्तु, और फिर अंतर ध्यान हो गए। ये गायन आता है ना, ये सब हम बच्चों का ही तो गायन है। इस समय हम जो भी अपने अंदर संकल्प रखते हैं, बाबा ने एक मुरली में बोला था कि बच्चों के पास इतनी शक्ति है लेकिन बच्चे भगवान को यूज करना नहीं जानते। बाबा को जब चाहे वो बाबा को बुलाए, बाबा हाजिर हाजूर है, विपरीत परिस्थितियों में से भी बाहर निकाल सकता है और निकालता है, हमारा तो जीवन का बहुत अनुभव है, लेकिन बच्चे मुझे यूज करना नहीं जानते, यूज नहीं करते। तो इस कारण से क्या होता है कि हम भी कई बार ये कह देते हैं, मानो मुरली सुनी, बहुत जोश चढ़ा, नशा चढ़ा, हाँ हम एक मन के हैं, हम विजयी रतन हैं, अंदर थोड़े समय रहेगा, फिर बाहर गए और आपस में बात बात की कि बात तो बाबा बहुत अच्छी कहते हैं, बच्चों को चढ़ाते हैं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक लेकिन बस आ जाता है, हम तो देखो ये हमारे बहने तो पूरे 24 घंटे सेवा में रहते हैं, समर्पित हैं, हम तो घर गृहस्थी में रहने वाले, एक बार मुटली पढ़ ली, एक बार ये कर लिया, हम कैसे आएंगे। वो बस जैसे ही मन में ये संकल्प आया, हमारे सारे संकल्प सब भगवान तक पहुंचते हैं, बाबा तक। बाबा ने कहा ना, एक एक बच्चे के संकल्पों का टीवी बाबा के पास है, कितने महान संकल्प आ रहे हैं, कितने कमजोर आ रहे हैं, बाबा का टीवी से तुरंत, विशेष करके जब कोई कमजोर संकल्प बच्चों को आता है, बाबा का टीवी तुरंत ऑन हो जाता है और पता चल जाता है फलाने बच्चे में ये कमजोर संकल्प आ रहा है। तो बाबा कोशिश भी करता है उस बच्चे को शक्ति देने की, लेकिन अगर माया के प्रभाव में वो इतने होते हैं, वो बाबा की टचिंग को कैच नहीं कर सकते। तो अगर मन में आया हम कैसे बनेंगे, यही बनेंगे बाबा तक संकल्प, और बाबा ने अगर जैसे भक्ति में कहते हैं, अगर ठीक है भाई तुम ही कह रहे हो हम कैसे बनेंगे, भगवान ने उसी समय तथास्तु बोल दिया, तो क्या हुआ, किसका नुकसान हुआ, हमारा हुआ या बाबा का हुआ, अपने पैरों पर हमने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली ना। इसीलिए संकल्प सिद्धि का ये समय चल रहा है, संकल्पों में भी हमें कमजोरी नहीं आने देनी है। संकल्प में कमजोरी आई तो फिर वो कभी ना कभी वाणी में आएगी, फिर वो कम कर्म में भी आ जाएगी, व्यवहार में आ जाएगी, और ये कमजोरी फिर जो है ना हमें माला से दूर ले जाएगी। इस कारण से बाबा कहता है कि माया को केवल हटा ही नहीं दो, माया को दूर से भगा दो। जैसे पहला संग होता क्या है, कमजोरी का कोई संकल्प आता है ना, पुराने संस्कार, कोई विकारों से ग्रसित कोई चीज संकल्प, तो पहले संकल्प आता है तो मन के अंदर हम उसे पालना देते हैं, आता है मन में भी, देखो पुरानी बातें भरी हुई हैं तो मन के अंदर भी जैसे गुदगुदी जैसा अनुभव होगा, पुरानी संस्कार है वो मन को एकदम लुभावने प्रतीत होंगे। फिर एक संकल्प आया, उसको हमने पालना दी, रोके रखा, उस वो दूसरे चार को खींच के ले आएगा, दूसरे और 8-10 को, इसमें कितना समय चला गया पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मन जो है ना उस प्रभाव में बह गया। और जब बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तब हमें पता चलता है अरे ये कमजोर संकल्प तो मेरे ऊपर हावी हो गया। लेकिन तब तक वो अपना घर जैसे बना लेता है और फिर उसको निकालने के लिए बहुत बहुत मेहनत और शक्ति की जरूरत होती है। इसलिए अभी बाबा ने कहा हुआ है, हमेशा ही बाबा कहते हैं ना, समय और संकल्प ये दो बड़े खजाने हैं, इनका रक्षण करो। और साथ ही साथ क्या होता है, समान हम जब सुबह मुरली सुन के गए, सुनी मुरली काफी समय तक, बहुत अच्छा रहता है, फिर भी धीरे धीरे बाहर के वातावरण में आते हैं, कई पेपर्स वगैरह आते हैं तो हलचल होने लगती है। बाबा ने कहा वर्तमान समय ना दो प्रकार के पेपर बच्चों के सामने विशेष आएंगे। वैसे तो बाबा ने कहा अनेक प्रकार के पेपर हैं, कई प्रकार के पेपर बाबा ने बताया। एक तो आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर, ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, जीवन के लिए भोजन है, पानी है, हवा है जो श्वास लेते हैं, ये सब चीजें भी जैसे दूषित हो जाएंगी। बाबा ने कहा भोजन होगा खाने लायक नहीं होगा, पानी होगा पीने लायक नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति आएगी तो क्या। इसीलिए बाबा ने पहले से ही बोला है अपने को सब परिस्थितियों के लिए तैयार करते चलो। और इसके लिए ये सब आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर है, पुराने संस्कारों का पेपर है, प्रकृति के पांच तत्वों का पेपर है, जो आत्मा है। अभी बाबा ने कहा समूह मृत्यु और अचानक मृत्यु बहुत होगी। समूह मृत्यु माने एक अर्थक्वेक आया, एक सुनामी आई, हजारों लाखों मर जाते हैं। समूह मृत्यु और अकाले मृत्यु, उसमें तो कोई ये डिस्टिंक्शन होता नहीं कि ये बुजुर्ग है इसको ले चलो और जवान है इसको छोड़ दो। अर्थक्वेक आ गया, सारे जितने उसकी चपेट में आएंगे सब मर जाते हैं। तो जब ये सब भी हो रहा है, ऐसों में काफी आत्माएं ना भटकती आत्माएं है। बाबा ने कहा कई आत्माओं को शरीर तैयार नहीं मिलता है, वो काफी समय तक बिना शरीर के रहती हैं, भटकती हैं, और फिर क्या होता है उनकी बहुत अतृप्त इच्छाएं होती हैं। और फिर किन्हीं किन्हीं मनुष्य आत्माओं के शरीर के द्वारा वो अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो इसीलिए ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। और अधिकतर ये भटकती आत्माएं, वो इनका निवास स्थान कहाँ होता है, ज्यादातर लौकिक दुनिया में भी बोलते हैं भाई शमशान घाट है या मुर्दा घाट जहां जलते हैं, अशुद्ध गंदी जगह, वहां पर इस प्रकार की आत्माएं अधिक निवास करती हैं। तो उसका भाव क्या है, अशुद्धता, केवल बाहरी नहीं, बाहर की भी शुद्धता रखे। जैसे जब जो भी यहाँ आते हैं, हमारे बाबा के सेंटरों पर जाते हैं, सब जगह कहते हैं बड़ी सफाई है, बहुत अच्छा है, इतने सारे लोगों का भोजन बन रहा है, इतने सारे लोग 20-20 हजार रहे पड़े हैं, लेकिन बड़ी सफाई है। तो बाहर की सफाई तो है ही है, लेकिन साथ साथ अंदर की भी सफाई चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। क्योंकि अंदर की सच्चाई सफाई होगी तो कोई भी अशुद्ध आत्माएं हमारे ऊपर वार नहीं कर सकती। लेकिन जहां कहीं भी अंदर की गंदगी होगी, अंदर कहीं भी विकार गुप्त रूप में हमारे ऊपर होंगे, ऊपर से तो हम दिखे चाहे सफेद कपड़े पहन लिए, चाहे वैसे जो हमारी धारणाएं हैं देखने में आए, लेकिन अगर अंदर हमारे अभी भी अंश के वंश रहे हुए होंगे, अंदर हमारी गुप्त भावना होगी विकारों के प्रति, उनको उनकी तृप्ति की, तो कहीं ना कहीं ये अशुद्ध आत्माएं इन शरीरों का आधार लेके अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। और सारा विकर्म तो उस आत्मा पर आएगा जिसका शरीर का आधार लेके वो इच्छाओं की पूर्ति की है। इसीलिए बाबा ने कहा ये सब तो पेपर होंगे ही, लेकिन अभी वर्तमान समय दो विशेष प्रकार के पेपर, एक तो हमारे शरीर का पेपर और दूसरा परिवार का पेपर, जो हमें समान से डिग्मित कर देगा। हम चाहते हैं हम अपने समान में रहें, अच्छे विचारों में रहें सारे दिन भर, और शुरुआत भी होती है, लेकिन जब कभी अगर मानो शरीर का पेपर आता है, बाबा ने कहा ये बड़े से बड़ा पेपर है, कोई भी होता है बीमारी होती है और जब अपने पर बीतती है तब आता है, बहुत कष्ट होगा। आपने देखा बाबा को कई प्रकार के परिस्थिति है। जब बाबा को कई बार खांसी बहुत आती थी तो इतनी 93 एज उम्र, तो खांसते खांसते कई बार बाबा की आंख भी गीली हो जाती थी, पानी आ जाता था और ये। लेकिन क्या दूसरे ही क्षण हमें लगता था बाबा को जैसे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, समान में स्थित पुनः होने के लिए अभी जैसे प्रकृति नेचर, हमारी अपनी नेचर इतनी पावरफुल हो कि बाहर की नेचर को बदल दे। बाहर की नेचर का मतलब ये बाहर की प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन्हीं से तो हमारा ये शरीर बना है। तो ये बाहर की प्रकृति है और जिनसे शरीर बना है, तो शरीर में अगर कोई व्याधि है, कोई हमें कष्ट दे रहा है, उसका प्रभाव हमारी मन की स्थिति, मन की नेचर के ऊपर न पड़े। वो हमारी है अंदर की नेचर, तो बाहर का प्रभाव हमारे अंदर न पड़े, बल्कि हमारी अंदर की नेचर इतनी स्ट्रांग हो, शक्तिशाली हो कि बाहर की नेचर को बदल दे। बात हो रही थी एक बाहर की नेचर प्रकृति, एक अंदर की। तो अक्सर करके ये होता है कि बाहर की प्रकृति हमारी अंदर की प्रकृति पर हावी हो जाती है। बाहर जैसा वातावरण है, मानो कहीं पर अर्थक्वेक आया, सुनामी, बहुत टीवी में न्यूज आ रही है, डेड बॉडीज दिख रही हैं, विनाश दिख रहा है, तो भले हम अपने ड्राइंग रूम में कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, लेकिन हमारा मन ही अंदर अंदर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर की प्रकृति इतनी शक्तिशाली है। बाहर आप सब लोग आए, यहाँ का बाहर का वातावरण इतना शक्तिशाली है, ऑटोमेटिकली हमारे विचारों में, व्यवहार में, हमारी दिनचर्या में यहाँ परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि बाहर का वातावरण इतना स्पिरिचुअली चार्ज्ड है। इसके विपरीत अगर जाओ, कहीं नाइट क्लब में जाओ, कहीं ऐसे वातावरण में जाओ, कोई पिक्चर देखो, कोई ऐसी, तो बाहर का जैसा वो होगा वो मन को वैसा बना देता है। लेकिन बाबा क्या चाहता है? बाबा ये चाहता है कि हमारे अंदर की प्रकृति इतनी शक्तिशाली हो जो बाहर की प्रकृति को बदलते है। और बाबा में वही देखते थे, बस बाबा को जैसे खांसी आ रही है, तकलीफ हो रही है, और फिर बाबा दूसरे ही क्षण, अरे बच्चे देखो कल बाबा जाके ऐसा, वहाँ कृष्ण का चित्र ट्रांसलाइट का, श्री कृष्ण का चित्र होता था, लक्ष्मी नारायण का, और वो कल बाबा जाके ऐसा बनेगा विष्णु कृष्ण, वहाँ तो कितना सुख होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ तो देखो पुराना शरीर है, पुराना प्रकृति है, दुख तकलीफ होती है, बीमारी होती है, कल बाबा जाके ऐसा बनेगा। ओ कल बाबा जाके, बाबा कहता है ना खुशी में क्या करना चाहिए, खग्गियां मारनी चाहिए खुशी में, बस ऐसा हो कल बाबा दिखाता था, हो कल बाबा जाके ऐसा। एक सेकंड पहले खांसी आ रही थी और बाबा ने अपनी अंदरूनी स्थिति से बाहर की प्रकृति को बदल दिया। खांसी तो एक तरफ रही, वो बाबा के चेहरे पर वही जैसे नई दुनिया की छाप एकदम वो आ जाती थी, खुशी की लहर, और वो ऐसा बन जाती। यही तो कहते हैं, इसीलिए कोई परिस्थिति हो लेकिन हमारी अगर अंदर की मन की स्थिति मजबूत है तो बाहर की किसी भी परिस्थिति को बदल देगी। तो ये बाबा का प्रत्यक्ष देखना, तो ये समान में सदा टिकने के लिए ये जरूरी है कि परिस्थितियां तो आएंगी। घर गृहस्थी में रहते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, कलयुगी दुनिया है, कभी कोई ऑफिस की, बिजनेस की, सोसाइटी की, सोशल प्रकृति आ गई, परिवार की, आएंगे पेपर आएंगे, पेपर ही नहीं आएंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे, तो वो सब तो आएंगे, लेकिन उन सब के ऊपर विजय प्राप्त करने की सबसे बढ़िया विधि यही है, अपने अंदर की प्रकृति मन को हम इतना स्ट्रांग कर लें। इसीलिए कहा है मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो ये प्रत्यक्ष बाबा का देखने को मिलता था। तो एक तो ये पेपर है, और इसके लिए क्या करें, शरीर का पेपर आया मानो बीमारी है, ये ना सोचें कि भाई जो बुजुर्ग हैं या जो जिनकी उम्र 50-60 हो गई ज्यादा वो बीमारी होंगे, हम जवान लोग हम नहीं हो सकते। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, ये तो शरीर का अभी कुछ है, वास्तव में तो हम सभी आत्माएं वानप्रस्थी हैं, बहुत पुराने 84 जन्म लेते लेते आत्मा पर इतना विकर्मों का बोझा इकट्ठा हो गया है कि वो शरीर के योग भोग रोग किन्हीं के द्वारा चुकतु होना है। अगर योग बल से पूरा चुकतु नहीं किया, रोग के द्वारा भोगना के द्वारा होगा। और अच्छा है जितना हो जाता है उतना अच्छा, धर्मराज पुरी में कोई सजाए नहीं खानी पड़ेंगी। तो इस कारण से वो बाबा ने कहा है, जो उसके लिए क्या करें। फिर बड़ा अच्छा, बाबा खुद उसका उदाहरण था। बाबा से जब कोई भी, बाबा को एक अभ्यास ये इतना पक्का था, कौन सा, शरीर में आने का और शरीर में जाने, मतलब आत्मा कोई निकल के नहीं जाती, लेकिन साकार ब्रह्म बाबा की बात है और ना कोई शिव बाबा की बात नहीं। शिव बाबा तो आ जा कभी भी सकता है, वो तो ठीक है, कोई बंधन नहीं, लेकिन वो नहीं, ब्रह्म बाबा को ही ऐसा अभ्यास, जब चाहे शरीर में आके पार्ट बजाया, और जब थोड़ा सा न्यारे हुए समय हुआ, देह के भान से न्यारे होकर के बाबा एक सेकंड में ही, बस जो बाबा ने बताया, कभी सूक्ष्म वतन, कभी परम धाम, कभी नई दुनिया में, कभी कहीं सकाश देने का कार्य, उसमें बाबा व्यस्त हो जाता था। इसी तरह देखते थे, बाबा जब मिलता था कहीं झोपड़ी में या हिस्ट्री हॉल में, बच्चों को मिलते थे, या कभी कभी बाबा अपने कमरे में भी, तब बाबा का कमरा तो बहुत छोटा था, जितना बेड पड़ा हुआ है बस उतना ही छोटा, मुश्किल से 8x10 का कमरा होगा, बस बड़ी छोटा ही कमरा। तो बाबा एक मिलते थे, तो टाइम दिया होता था भाई, मानो 10 बजे बम्बई पार्टी आएगी मिलेगी, 10:30 बजे दिल्ली, 11 बजे कलकत्ता पार्टी आदि आदि, हर एक को टाइम दिया हुआ होता था पार्टी समय पर लेके। टीचर इंचार्ज जो ब्राह्मणी आती थी, बस देखते थे, बस बाबा आंख खुली है अपनी मस्ती में, जैसे मस्त है, न्यारा है बाबा। टाइम हुआ, टीचर अंदर आके देखेगी, लेकिन कोई बाबा कोई नींद में नहीं, कोई साक्षात्कार में नहीं, वो नहीं, लेकिन जैसे आंख खुली होते भी एकदम बाबा अपनी मस्ती में देर से न्यारा। टीचर वो आके बोलती थी, बाबा बाबा, तो कई बार बाबा को जैसे जर्क सा लगता था, अच्छा बच्ची आ गए, हाँ हाँ बाबा मैं फलानी जगह से पार्टी लाए हूँ, हाँ बच्ची लेके आओ। बस पार्टी आती थी, फिर बाबा हरेक के साथ मिलते थे, टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते, जो भी पार्टी यहाँ पर है वो पूरा करके बस वो पार्टी गई। कुछ समय अगर होता था बीच में 5-7 मिनट 10 मिनट, फिर बाबा एकदम देह से न्यारा हो जाता था। तो जितना हमारा भी ये अभ्यास होगा, जब देह में आके पार्टी माने चेतना, देह आत्मा कोई निकल के नहीं जाती है, लेकिन चेतना अगर हमारी निकल गई, जैसे कि होता है ना, डॉक्टर लोग कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं और वो चेतना को लुप्त कर देते हैं, तो वहां पर काटेंगे भी, ऑपरेशन करेंगे तो कोई खून भी निकलेगा लेकिन दर्द का अनुभव नहीं होगा। इस रीति से वो जब आत्मा ही न्यारी हो गई थोड़े समय के लिए, उसकी कॉन्शियसनेस चेतना, तो भले हम शरीर में ही होंगे लेकिन शरीर में जितनी व्याधि होगी, दर्द होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, लेकिन उसका हमें अनुभव नहीं होगा। और जब दर्द का अनुभव नहीं होगा तो हमारी खुशी कायम रहेगी। जब दर्द का अनुभव होता है तभी तो खुशी गायब होती है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस की आवश्यकता है, देह में आए, जब चाहे देह में आए, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। तो ये शरीर का पेपर पास करने की सबसे बढ़िया विधि। दूसरा परिवार का पेपर। अब हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, बाबा का परिवार बहुत, और जितना जितना परिवार बढ़ता है उतना देखने में आता है कि भाई हरेक सारी राजधानी स्थापन हो रही है, राजा महाराजा साहूकार प्रजा सब बन रहे हैं। तो कई दीवार देखने में आता है, कोई कोई पुरानी आत्माएं भी होती हैं, तो कई उनका चलन या व्यवहार उतना मर्यादा युक्त नहीं होता जितना होना चाहिए। भाई 25 साल पुराने हैं, 30 साल पुराने हैं, तो जब कोई भी नए या दूसरे देखते हैं, अरे इनमें भी ये कमी, इतने साल पुराने ऐसा व्यवहार, तो उनका जरा वो हलचल होती है उनमें, तो क्या होता है, अपनी स्थिति डावाडोल होने लगती है। तो उससे क्या, उसके लिए बाबा ने क्या बताया है, ये तो परिवार है, किसी को भी बाबा ने कहा है, मेरा एक एक बच्चा जो है ना, मेरा चुना हुआ बच्चा है, और ये एक बच्चा कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बड़े से बड़ा दुनिया वाला व्यक्ति है उससे भी महान है। क्यों? क्योंकि भगवान की नजर उन पे पड़ी है और भगवान ने चुना है। भले आज उसके अंदर कोई कमजोरी दिखाई दे रही है, लेकिन हम कभी भी किसी को एक काल की दृष्टि से न देखें, तीनों कालों की दृष्टि से देखें। ये वही आत्मा है कल्प पहले वाली, जिस डबल ताजधारी आत्मा, जब जैसे हम सतयुग में आए थे, डबल ताज था, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, तो ऐसी थी। आज भले इसका ये पार्ट दिख रहा है, कल ये फिर और महान पार्ट की ओर अग्रसर होगी। फिल्म भी होती है, बाबा ने कहा ये ड्रामा है, मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है। तो भगवान ने जब हमें सबको चुना है, तो हम कैसे कह सकते हैं किसी के पार्ट के लिए, अरे इसके अंदर ये, क्योंकि पार्ट जो है ना, जितना वैरायटी होता है उतना ड्रामा इंटरेस्टिंग होता है। कोई भी फिल्म हो बिल्कुल मोनोटोनस जैसी होगी, अगर एक जैसी भाई फिल्म होती है, कोई हीरो हीरोइन होते हैं, कोई कॉमेडियन होते हैं, कोई उसके अंदर नाचने गाने वाले होते हैं, विलेन होता है, अलग अलग होते हैं, तो फिल्म में नाटक में इंटरेस्ट होता है। तो भगवान ने भी बोला ये नाटक इतना एक्यूरेट बना है, मुझे बहुत प्रिय है। तो जो चीज बाबा को प्रिय है उसको हम कैसे कह सकते हैं, नहीं बाबा ये ड्रामा मेरा ऐसा क्यों बना, ऐसा क्यों हुआ, उसके अंदर ऐसी कमी क्यों दिख रही है। नहीं, बाबा ने कहा है मैंने चुना है, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। आज भले किसी आत्मा में कोई कमजोरी दिख रही है, लेकिन ये एक बीच का दृश्य है। फिल्म में भी होता है, कोई अच्छा ठीक है, बीच में हलचल होती है, परिवार टूटते हैं, दुख होता है, बाद में फिर ठीक हो जाता है। तो अंत में हमें मालूम है ये संगम युग का अंत भी ना बहुत बहुत सुखदाई है। अंत में हम सब अपनी कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप स्थिति को पहुंचने वाले हैं। तो बीच की हलचल से हम प्रभावित ना हो, किसी के भी हम तरफ उंगली ना उठाए उसका ऐसा पार्ट क्यों, क्योंकि ये ड्रामा तो वैरायटी है। इसलिए तीनों काल की दृष्टि से हम हर आत्मा को देखेंगे तो कभी भी किसी आत्मा की कोई कमी कमजोरी हमें नहीं दिखेगी। हलचल वो हमारे स्वमान को डगमग करने के लिए वो परिस्थिति निमित्त नहीं बनेगी। और जब हमारा स्वमान कायम रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली स्वमान, हमारा अपना मान कायम रहेगा, हमारे मन से, व्यवहार से, वाणी से, कर्म से दूसरों के लिए भी सदा सम्मान निकलता चला जाएगा। कभी भी किसी को अपमान की दृष्टि से देखने की कोई बात ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब जितना हम अपने स्वमान में रहेंगे, जब हमारे सामने लाल चश्मा आता है लाल लाल हर चीज दिखती है, नीला चश्मा पहन लेते हैं तो नीली नीली। तो जब हम अपने स्वमान से डगमग होते हैं तो दूसरे को सम्मान वगैरह देने की बजाय उसके प्रति हमारी घृणा की, ईर्ष्या की, अपमान की भावना पैदा हो जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा स्वमान और सम्मान का ये सदा अगर बैलेंस रखते हुए हम चलते हैं ना तो सदा हमारी स्थिति पावरफुल रहती है और हम सदा अपने को उसी स्थिति में स्थित करते हुए फाइनल स्थिति की ओर चलते हैं। मैं अब अंत में एक बात विशेष 18 जनवरी की बताता हूँ। बाबा की पहचान भी और क्या है इसकी, तो हमने देखा बाबा से अनेक बार मिले थे, जब से ज्ञान में आए दसियों बार मिले होंगे, लेकिन हर बार हम देखते थे बाबा जैसे अपने को समेटता जा रहा है बाहर। पहले बाबा हम लोगों से मिलते थे तो हम लोग बहुत बातें सुनाते थे, बाबा उसका समाधान देते थे एक एक को 10-10, 15-15 मिनट। फिर बीच में 1965-66 में देखा, 67 में बस बाबा के पास कोई सेवा समाचार सुनाने के लिए, अपने पुरुषार्थ का कोई भी समाचार के लिए जब जाते थे, बाबा एक दो लाइन सुनते थे, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो हमने बोलना ही शुरू किया है, बाबा कहते नहीं बच्चे बाबा समझ गया, ऐसा कर लो ऐसा। लेकिन अंतिम दो दिनों में हमने क्या देखा, हम सब आसाम में पोस्टेड थे, इंजीनियरिंग पास करने के बाद ONGC ज्वाइन किया तो आसाम में वहां पोस्टेड थे, तो वहां से 17 जनवरी की सुबह यहाँ पहुंच गए थे। तो 17 जनवरी और 18 जनवरी को बाबा के साथ ही साथ थे, बिल्कुल निकट बाबा के पूरा देखने का सौभाग्य मिला फरिश्ता स्वरूप कर्मातीत स्थिति को। तो बाबा के सम्मुख कई बार जाना हुआ कि बाबा से ये पूछेंगे, बाबा से, वहां कोई टीचर नहीं थे तो क्लास वगैरह भी चलाते थे, सेवा भी थी, अपना जॉब भी था ONGC में, तो लेकिन बस बाबा ऐसा दृष्टि देखते थे, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो ऐसा कर लो ऐसा हो जाए, यानी कि एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा तुरंत मन के भाव को समझ करके उसका समाधान तुरंत दे देता था। एक बार हुआ, दो बार, लगभग 6-7 बार जब ऐसा हुआ उन दो दिनों में, तो बाद में हमने पूछा तो दीदी मनमोहनी जी थे, उन्होंने बताया कि देखो जब व्यक्ति की अपने मन के संकल्पों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाती है तो किसी के भी दूसरे के संकल्पों को वो पढ़ सकता है, उसका समाधान दे सकता है। और वही स्थिति बाबा की थी, मन जीते जगत जीत गई। अपना मन के ऊपर इतना कंट्रोल था, जैसे बाबा के सम्मुख गए बाबा ने दृष्टि दी, मन के भाव को पढ़ के तुरंत उसका समाधान दे दिया। तो ये स्थिति बाबा अभी हम बच्चों की, ये ही सच्चे स्वमान की स्थिति है, उसका रिजल्ट है। कि हम अपने जितने अपने समान में स्थित होंगे अपने मन के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होगा, और जब हम अपने इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे, मन में ही तो इच्छाएं होती हैं, संकल्प होते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे तो तुरंत ही दूसरे की इच्छाओं को हम पढ़ सकेंगे, उनको पूरा कर सकेंगे। और यही अंत में हम सबका पार्ट चलना है जो गायन है। अंत में बाबा ने कहा है इतनी विकट परिस्थिति होंगी लेकिन आपकी स्थिति ऐसी हो ज्वालामुखी योग का, कैसे रोती हुई आत्मा आए आपके सम्मुख आए, उसका स्वरूप बदल जाए, हंसती हुई चली जाए। अग्नि का यही तो गुण होता है, अग्नि में कोई भी चीज डालो उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही ज्ञान सूर्य परमात्मा वो अग्नि का स्वरूप है प्रकृति में। तो ऐसी हमारी स्थिति योग की हो, दुखी आत्मा आए लेकिन सम्मुख आते ही सुख का अनुभव करे और सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए लेकिन शांति के सागर में डुबकी लगाती हुई चली जाए। प्रैक्टिकल अनुभव, जैसे प्रैक्टिकल अनुभव होता है गर्मी से आ रहे हैं एसी में आए और एयर कंडीशनर में, उसमें ठंडक का अनुभव होता है, शीतलता, तो सुख मिलता है। तो इसी तरीके से ये अनुभव जब आत्माएं करेंगे, जो बाबा ने अभी कई बार कहा है, अभी आत्माएं बोलेंगे, हम करेंगे सुनेंगे, उसके उसमें नहीं है स्थिति में, अभी आत्माओं को अनुभव की जरूरत है। और वो अनुभव तब होगा जब हम उसका स्वरूप बने हुए होंगे। और ये ही प्रकृति जीत का लक्षण, क्योंकि बाबा ने अंतिम समय जब मुरली चलाई 18 जनवरी को, बस ऐसे हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठे थे और मुरली चला रहे थे, हम सब लोग सामने बैठे हुए थे, बस बाबा मुरली चलाते हुए हमारे मन में भी एक संकल्प आया कि क्या भी अच्छा हो अगर बाबा कुछ हमारे लिए भी, पुरुषार्थ के लिए भी और बोले। जैसे अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख होते हैं तो सब किसी संकल्प आता है, मुझे स्टेज पर जाने को मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि एकदम निकट से मिल जाए, होता है ना। तो उस समय तो छोटा सा हॉल था, हिस्ट्री हॉल आपने ऊपर देखा है, मन में जैसे ही संकल्प आया, और कहते हैं भक्त के मन में संकल्प होता है भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, तो मन में उधर संकल्प आया और दूसरे सेकंड ही बाबा ने जैसे नाम लेके कुछ महावाक्य उच्चार दिए जो हमारे जीवन के लिए हमेशा के लिए गाइडलाइन बन गए। तो है क्या कि हमारे मन में जितने हाई संकल्प होंगे, ऊंच स्थिति होगी, वो तुरंत भगवान बंधा हुआ है उसको पूर्ण करने के लिए। तो बाबा ने मुरली चलाई, लेकिन उस दिन 18 जनवरी की मुरली में एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी। वो इस बात का प्रतीक है जब आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो शरीर के सभी कर्म भोगों के ऊपर वो आत्मा विजय प्राप्त कर लेती है। तो उस दिन देखा एक बार भी ऐसी स्थिति नहीं, और क्योंकि कर्मातीत अवस्था को बाबा प्राप्त कर चुके थे। उसके बाबा उठ करके गए अपने कमरे की तरफ, और बस बाहर निकल के बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। तो ये स्वमान और सम्मान का बैलेंस के साथ, जब बाहर की सम्मान क्या है, स्थूल चीज है, स्वमान सूक्ष्म चीज है अंदर के। तो जितना हमारा बैलेंस इंटरनल और एक्सटर्नल होगा, हमारे ज्ञान मार्ग की सफलता ही एक शब्द के ऊपर है, बैलेंस। इसीलिए बाबा ने कहा लव एंड लॉ का बैलेंस, अंतर्मुखता बाहर मुखता का, गंभीरता का हर्षित मुखता का, इन सब का बैलेंस। और ये ही असमान और सम्मान की बात है। समान यानी अंदर का पुरुषार्थ, सम्मान जो बाहर देखने में आता है, व्यवहार में देखने में आता है, इसका बैलेंस। और वो बाबा का देखा, बस बाबा ये करके गए और अपने कमरे में जाके बाबा ने बस सहज रीति से देह त्याग किया, कर दिया। लेकिन विशेषता वंडर बात तो उसके बाद देखी, 18 जनवरी की रात को लगभग 9-10 बजे जैसे बाबा ने जब शरीर छोड़ा, लेकिन बाबा का शरीर 18 जनवरी की रात भर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया, क्योंकि चारों तरफ से टेलीफोन टेलीग्राम आते रहे, रखो शरीर, हम आ रहे हैं। सबको आते आते जो भी परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए देवी परिवार के। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये, लगभग 65 घंटे तक शरीर रखा रहा, न उसमें कोई इंजेक्शन दिया गया, न उसमें कोई केमिकल लोशन लगाया गया, बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ शरीर। हम लोगों ने जब बाबा को स्नान भी कराया 21 तारीख को, और वो बिल्कुल जैसे बाबा का शरीर फ्लेक्सिबल, नहीं तो शरीर जब आत्मा जाती है तो थोड़ा अकड़ जाता है, लेकिन बाबा का शरीर फिर बिल्कुल, फिर भी ये ऐसा काफी हद तक जैसे ऐसा फ्लेक्सिबल चमकता हुआ शरीर लगता था, अभी बाबा उठेगा और हमेशा की तरह कहेगा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे। ये है प्रकृति जीत का लक्षण, 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर। इस पर भी बाबा ने इतनी विजय 5 तत्वों पर भी प्राप्त कर ली, जो अंत समय तक भी ना इन तत्वों ने कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दिया। बाबा भी यही हम बच्चों से भी चाहता है, हम बच्चे भी प्रकृति जीत बने। पुरुषार्थ सारा वो कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति जीत का मतलब ये जो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश है, इनके प्रति भी हमारी इतनी शुभ भावना, शुभ कामना रहे, पॉजिटिविटी रहे, क्योंकि यही हमारे सबसे निकट के साथी हैं। सतयुग के आदि से लेकर अंत तक हमें शरीर तो मिलना ही है, अलग अलग जन्म लेंगे, लेकिन इन जो ये प्रकृति के तत्वों से बना हुआ शरीर है, ये किस आधार पर मिलेगा? अंत मते सो गति, जो अंत में जब हम यहाँ शरीर छोड़ेंगे उस समय जो हमारी मानसिक स्थिति होगी अंत मते, उसके आधार पर ही हमें नया जन्म मिलेगा, जो बाबा ने कहा है। इसीलिए हमारा सारा पुरुषार्थ उस एक घड़ी के लिए हो रहा है जब हम आत्मा इस देह को त्याग करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है उसके लिए ना, इन प्रकृति के तत्वों के साथ हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट, उनको अपना मित्र बनाना पड़ेगा। ये तो विषय खुद बहुत लंबा है, लेकिन इसे संक्षिप्त में हम करके कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये तत्व ही हमारे अंत के साथ ही, मानो अंत में अर्थक्वेक आ गया, भूचाल आ गया, और उसकी वजह से अगर हमारा शरीर छूट गया, चारों तरफ हाहाकार मचा है, चारों तरफ वो, ऐसे में हमारी मन की स्थिति क्या होगी? लेकिन बाबा ने क्या कहा है कि ऑटोमेटिकली जब कोई भी आपदा आने वाली होगी, जिनका वॉइसलेस कम्युनिकेशन होगा, अभी तो वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये भी खत्म हो जाएगा, जो टेलीफोन है ये है वायरलेस कम्युनिकेशन, कोई काम नहीं करेगा, लेकिन मन का कनेक्शन जितना क्लीन और क्लियर होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पांव उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, जहां पर ये प्रकृति के तत्व तो हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे। हम स्व इच्छा से शरीर छोड़ के, जैसे ब्रह्मा बाबा को देख रहा, बाबा अब मैं आता हूँ, बस स्व इच्छा से हमें पता चल जाएगा, जो बाबा ने कहा है सतयुग में भी तो यही होगा, अंत समय जब होगा लगेगा अब ये पुराना शरीर छोड़ रहे हैं, कोई दुख नहीं होगा। वही संस्कार यहाँ से लेके जाना है, वो कब होगा? जब इन प्रकृति के तत्वों के साथ हमने मित्रता की होगी। उदाहरण के तौर पे अंत समय में पानी विनाश का कारण बहुत बनेगा, बाढ़ आएगी, बरसात होगी, सुनामी होगी, लेकिन अगर हमने पानी को अपना मित्र बनाया होगा, पानी का कौन सा गुण मुख्य है? एडजस्टमेंट। गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में, चम्मच में लो, चम्मच में, एडजस्टमेंट का गुण, फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसी अगर हमने अपने अंदर एडजस्टमेंट का गुण धारण किया होगा, हर परिस्थिति में हम चले, हर व्यक्ति के साथ चले, तो पानी हमारे दुख और मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पानी को हमने अपना मित्र बना लिया, और मित्र कभी भी मित्र की जान नहीं ले सकता। ऐसी पृथ्वी का गुण कौन सा है? पृथ्वी दाता है, पृथ्वी हमेशा देती है। पृथ्वी में एक बीज बो दो, 1000 बीज वाला पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे, फल देती है, सब्जी देती है, गेहूं, अनाज, पानी, पेट्रोल, हर चीज क्या नहीं देती, दाता। ऐसे ही हम भी अगर हमने दाता का गुण धारण किया होगा, जो भी आत्मा हमारे सम्मुख आए उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम, सम्मान, स्नेह, आदर, ये होगा। इसमें कोई खर्चा तो होता नहीं, तो जितना हम ये देते चलेंगे उतना, जैसे हमने पृथ्वी का गुण धारण कर लिया, पृथ्वी को मित्र बना लिया, तो जितनी भी हलचल होगी अंत समय में पृथ्वी में, वो हमारे दुख, अशांति, मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमारे फ्रेंड हो गया, फ्रेंड हमेशा फ्रेंड। इसी तरीके से हर चीज में, हवा की तरह वायु हर चीज को ऊपर उड़ाती है, हवा की तरह हम हल्के रहे, कोई परिस्थिति आए हमें भारी ना कर दे। इसीलिए वो भारीपन की हमारी स्थिति नहीं होगी, हल्के रहेंगे तो जितना साइक्लोन आएंगे, जितना तूफान आएंगे, कुछ भी हो, वायु चाहे 300 मील की रफ्तार से चलेगी, जितना विनाश करे, लेकिन मुझे नहीं कर सकती विनाश। क्यों? क्योंकि वायु तत्व को हमने अपना मित्र बना लिया। इसी तरह आकाश की तरह विशालता चाहिए, किसी का कोई अवगुण हमारे हृदय में न बसे। आकाश की तरह जितनी विशालता होगी तो आकाश मार्ग से आने वाले जितने विनाश के साधन होंगे, कोई रॉकेट हो, एटम बम हो, या बादल फटने का, क्लाउड बर्स्टिंग वगैरह, वो हमारे दुख, अशांति, मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि आकाश जैसी विशालता हमने धारण करी। किसी भी आत्मा के प्रति हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ना हो, हर आत्मा हमें लगे ये मेरे अपने हैं। जैसे हम सबको बाबा से लगता था, दादियों से भी अभी लगता है कि दादियां हमारी हैं, बाबा हमारा है, तो इस तरीके से हर एक को हमसे ये लगना चाहिए मेरे अपने। इसी तरह सूर्य की तरह, हमारा सूर्य ज्ञान, सूर्य परमात्मा की तरह ना, बस हर आत्मा को, बस दुखी आत्मा उसे सुख में बदलने का, अशांति को शांति, ये जितने प्रकृति के गुण हैं, ये हम अपना धारण करेंगे तो समान सम्मान के बैलेंस से ही ये संभव है। तो अंत में ये प्रकृति हमारे दुख अशांति का कारण नहीं बनेगी, अंत में सोगते हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।